दिन भर तारीख 24 जून दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत पर पाकिस्तान के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं की फंडिंग का आरोप, भारत ने किया खंडन, करेंगे विश्लेषण।
जानकारी तो लोगों को थी और लोगों को इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती थी, पर शायद ये एक डायरेक्ट क्विड प्रो को किया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ।
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ी, डिग्री मामले में दिल्ली अदालत ने याचिका की मंजूर।
अगर एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ही रहती हैं तो क्या ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? श्रीमती स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए।
दुनिया जहान में बात लातिन अमरीकी देशों में भ्रष्टाचार की समस्या की, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों में से एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM के पदाधिकारियों ने ब्रितानी अधिकारियों को बताया है कि पार्टी को भारत सरकार से पैसा मिल रहा था। पाकिस्तान के एक जिम्मेदार सूत्र ने बीबीसी को बताया कि यह जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को तब दी गई जब वे MQM पर लगे पैसे की हेराफेरी के आरोप की जाँच के दौरान औपचारिक पूछताछ कर रहे थे। हाल के सालों में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए चरमपंथियों ने पुलिस को यह बताया है कि उन्हें भारत में प्रशिक्षित किया गया है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और भारत घोर प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और उनकी सेनाओं में अक्सर झड़पें होती रहती हैं। भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया। MQM ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाज विज्ञानी प्रफुल्ल बिदवई का 66 साल की उम्र में हॉलैंड के एम्स्टर्डम में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत गले में भोजन फंस जाने की वजह से हुई। बिदवई पर्यावरण, वैश्विक न्याय और शांति जैसे मुद्दों पर लिखते थे। उनकी वेबसाइट प्रफुल्लबिदवई.org के मुताबिक वो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन और नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य भी रह चुके थे। अमरीकी मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग क्षेत्र में एक पुलिस चौकी पर हुई मुठभेड़ में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। रेडियो फ्री एशिया का कहना है कि उइगर समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर चाकुओं और बमों से हमला किया। रमजान के मौके पर उइगर मुसलमानों पर सख्त प्रतिबंध लगाना इस मुठभेड़ की एक वजह हो सकता है। शिनजियांग में चीनी अधिकारियों और उइगरों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। एक रिपोर्टर के पूछने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने कहा कि शिनजियांग में कानून और व्यवस्था पर किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त इस घटना की पुष्टि करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो चीनी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह शिनजियांग में इस तरह की हिंसक करतूतों को रोकने, वहां के लोगों और संपत्ति की हिफाजत करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये थे लुकांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम के बंदूकधारियों ने कम से कम 40 लोगों को मार दिया है। बोर्नो राज्य के दो गांवों के निवासियों के मुताबिक चरमपंथी पिकअप ट्रक्स और मोटरसाइकिलों पर आए और उन्होंने घरों को जलाना, लूटना और लोगों को मारना शुरू कर दिया। पड़ोसी देश निजेर के एक गांव पर भी हमला हुआ। जब से नाइजीरिया में नए राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने पद संभाला है और घोषणा की है कि वे अशांति और हिंसा को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, तब से इस तरह के हमले और तेज हो गए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार से सेना के एक वाहन पर टक्कर मारी, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बड़ी खबर, पाकिस्तान की पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों को बताया है कि उन्हें भारत सरकार से फंडिंग मिलती रही है। बीबीसी को पाकिस्तान के विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है। ब्रिटिश अधिकारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और MQM की एक प्रॉपर्टी से मिले हथियारों को लेकर जाँच कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि पिछले 10 सालों में भारत ने सैकड़ों MQM चरमपंथियों को प्रशिक्षण दिया है। भारतीय अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। MQM ने इन दावों पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। बीबीसी संवाददाता ओवेन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट सुनिए नितिन श्रीवास्तव से।
متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم پارٹی کے یہ کارکرتا اپنے نیتا الطاف حسین کے سمرتھن میں کراچی کی سڑکوں پر ویرودھ پردرشن کر رہے ہیں, مگر اس پاکستانی راجنیتک دل کے نیتا لندن میں رہتے ہیں. ایم کیو ایم نیتا الطاف حسین پچھلے 20 سالوں سے آتم نرواسن میں برٹن میں رہ رہے ہیں. اب وہ ایک برطانی ناگرک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم دھرم نرپیکش مدھیہ ورگیہ دل ہے اور پاکستان میں اس کے پاس کافی بڑا جن آدھار ہے. پاکستانی سنسد میں اس کے 24 سدسیہ ہیں. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دل کا ایک اور پہلو ہے جس کی جانچ پاکستان اور برٹن دونوں جگہ ہو رہی ہے. بی بی سی کو ایک آدھیکارک پاکستانی سوتر سے پتا چلا ہے کہ ایم کیو ایم کے ورشٹھ ادھیکاریوں نے اوپچارک اور ریکارڈ کیے گئے انٹرویو میں برطانی ادھیکاریوں کو بتایا ہے کہ انہیں بھارت سرکار سے دھن مل رہا تھا. بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ بات کافی چونکانے والی ہوگی کہ پاکستان کی ایک اہم پارٹی کو بھارت سے فنڈ کیا جا رہا ہو. پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ادھیکش عمران خان کہتے ہیں,
یہ ایک مافیا کے روپ میں ابھرے ہیں. ایم کیو ایم کا ایک راجنیتک پکش ہے جو اب سکڑ رہا ہے, اور ایک اگروادی ونگ ہے. اس اگروادی ونگ پر لندن میں بیٹھے الطاف حسین کا نینترن ہے.
جب آپ اس بھارتیہ فنڈنگ جیسے آروپ سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ادھکتر پاکستانی کیا سوچیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟
ادھکتر لوگ سکتے میں ہوں گے, مگر کئی بار آپ کو یہ آبھاس ہوتا ہے کہ انہیں باہر سے نینترت کیا جا رہا ہے.
مگر یہ صرف فنڈنگ کی ہی بات نہیں ہے. کراچی کے ایک ورشٹھ پولیس ادھیکاری نے حال ہی میں کہا تھا کہ گرفتار ہوئے ایم کیو ایم کے 2 اگروادیوں نے بھارت میں پرشکشن کی بات سویکار کی تھی. کراچی کے ایس ایس پی راؤ انور,
بوتھ آف دیز مین ہیو وزٹڈ انڈیا مینی ٹائمز اینڈ ڈیورنگ دیز وزٹس,
یہ دونوں کئی بار بھارت گئے ہیں, اور ان یاتراؤں کے دوران انہیں بھارتیہ سینا کی خفیہ ایجنسی را سے پرشکشن ملا ہے.
پاکستانی ادھیکاریوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ بھارت میں ایسے کئی شیور ہیں جن میں پچھلے 1 دشک میں سینکڑوں ایم کیو ایم کارکرتاؤں کو وسفوٹکوں, ہتھیاروں اور ودھونس کے کاموں میں پرشکشت کیا گیا ہے. بی بی سی نے جب ایم کیو ایم کو فنڈنگ اور پرشکشن کے یہ دعوے بھارتیہ سرکار کے سامنے رکھے تو اس نے کہا کہ یہ آروپ پوری طرح بے بنیاد ہیں. ایم کیو ایم نے کہا کہ وہ اس پر ٹپنی نہیں کریں گے. الطاف حسین اب بھی لندن سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی پارٹی کے سمرتکوں کو سمبودھت کرتے ہیں, مگر ایم کیو ایم پر اب برٹین اور پاکستان دونوں ہی اور سے دباؤ بڑھ رہا ہے. اس سال مارچ میں ایم کیو ایم کے کراچی استھت پارٹی مکھیالے پر چھاپے مارے گئے تھے. الطاف حسین نے کہا کہ پولیس خود ہتھیار وہاں چھپا کر لے گئی تھی اور بعد میں انہیں وہاں سے ڈھونڈ نکالنے کا ناٹک کیا. ادھر برٹن میں پولیس جانچ تب شروع ہوئی تھی جب 2010 میں اتری لندن میں اپنے گھر کے نزدیک ایم کیو ایم کے ایک ورشٹھ ادھیکاری عمران فاروق کی چاقو مار کر ہتیا کر دی گئی تھی. ہتیا کانڈ کی جانچ کے دوران پولیس کو ایم کیو ایم سے جڑے ٹھکانوں سے 5 لاکھ پاؤنڈ نقد ملے, جس کے بعد منی لانڈرنگ کی جانچ بھی شروع ہو گئی. اس معاملے میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے کچھ انیہ نیتا گرفتار کیے گئے تھے اور ابھی وہ ضمانت پر ہیں. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے انوسار برطانی ادھیکاریوں کو ایم کیو ایم کی لندن میں استھت ایک پراپرٹی سے مورٹار, ہتھ گولے اور بم بنانے کے سامانوں کی ایک سوچی بھی ملی. پاکستان کے ایک ادھیکارک سوتر کے انوسار رپورٹ بھروسے مند ہے. برٹن اور پاکستان کالے دھن اور ہتیا دونوں ہی معاملوں میں ایک دوسرے کا سہیوگ کر رہے ہیں, جس سے ایم کیو ایم پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اب پاکستان نے ہتیا کے معاملے میں ایک سندگدھ ویکتی سے بھی ملنے کی انومتی برطانی ادھیکاریوں کو دے دی ہے. پاکستان کے گرہ منتری چودھری نثار علی,
مگر ہمیں یہ اطلاع آئی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں میٹروپولیٹن پولیس کی ٹیم اس شخص کی تفتیش کے لیے یہاں پہنچ جائے گی.
لندن میں ایم کیو ایم سے جڑی جانچ دھیمی رہی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کافی کچھ داؤں پر ہے. نیو اسکاٹلینڈ یارڈ میں لیے گئے فیصلوں پر اسلام آباد, دلی اور خاص طور پر کراچی میں کافی نزدیکی سے نظر رکھی جا رہی ہے. اوون بینٹ جونز, بی بی سی نیوز.
یہ رپورٹ سنا رہے تھے نیتن شریواستو. دیویا آرے نے بات کی ودیش معاملوں پر نظر رکھنے والے ورشٹھ پترکار سندیپ دکشت سے اور پوچھا اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ایم کیو ایم کو دھن مہیا کراتا ہو.
ایک اسپیسیفک کیس کے بارے میں تو شاید بولنا پھر پورے علاقے کے بارے میں آپ جنرلائز نہیں کر پائیں گے, पर अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान की जब से बंटवारा हुआ तब से ये दोनों देश ही क्या बाकी जितने देश भी हैं पूरे इस इलाके में, चाहे वो साइक्स पिकॉट का एग्रीमेंट हो जिसके तहत मिडल ईस्ट बांटा गया हो या हिंदुस्तान बांटा गया हो, तो जिस तरह से बंटवारे हुए उसने इनकरेज किया सब देशों को अपनी कोवर्ट एजेंसियों को भी इस्तेमाल करने के लिए, जिसको कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप या अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कि और भी खराब थी और जो कि और भी गूढ़ समस्याओं को उत्पन्न करती थी, तो सबने इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का पहला इस्तेमाल 1948 में शाह ऑफ इप्पी के रिवोल्ट के बारे में कहा गया, और पाकिस्तान का तो जैसा आप जानते हैं जब उन्होंने कबायलियों को इस्तेमाल किया कश्मीर में 1948 में, और तब से इस तरह के जो इस्तेमाल रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उन्होंने दोनों के बीच अविश्वास को ज्यादा बढ़ाया।
तो क्या ये जानकारी आपको चौंकाती है या पुरानी लगती है?
चौंकाती तो नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ पे क्या खेल खेलती है, और जो विदेश मामलों में रुचि रखते हैं उनको तो इनके विरोधाभास भी पता है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी पश्चिमी बॉर्डर पे किसी और के साथ अलाइंड होती है, दूसरी तरफ उसी के दुश्मन के साथ अलाइंड होती है। तो ये स्टेटक्राफ्ट का एक विंग है एक्चुअली, पर ये जो है जो अगर पहले अविश्वास में बटे हुए देश हैं तो उनको साथ लाने में तो बिल्कुल भी मददगार नहीं साबित होती। ये जो खुलासा जो है, ये जानकारी तो लोगों को थी और लोगों को इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती थीं, पर शायद ये एक डायरेक्ट क्विड प्रो को किया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान भी कुछ ऐसी चीजों पर अभी हाल में ही काफी जोर डाल रहा था, तो मेरे ख्याल से शायद ये आईना दिखाने की भी कोशिश है।
तो क्या पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा अब भारत को ये कहने के लिए कि आपकी तरफ से भी स्पॉन्सर हो रही है हिंसा और हिंसक तत्व हमारे देश में, क्या फॉलोअप देखते हैं?
वो तो कहते ही है ना, पुरानी कहावत है, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो अलग अलग नजरिया होता है अलग अलग देखने का। जैसा कि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो हम आशा करते हैं कि जो अंडरग्राउंड और स्कल डगरी की जो चीजें होती हैं इन पे अगर थोड़ा बहुत अंकुश लाया जाए या इनसे मुंह फेरा जाए तो शायद इंडिया और पाकिस्तान या बाकी सारे देश जो हैं इसे पूरे इलाके में उनको पास आने में मददगार होगा।
पर आप भारत सरकार जिसने की कहा है कि ये दावे एकदम गलत हैं और पाकिस्तान सरकार, इनकी तरफ से किस तरह के रिएक्शन को एंटिसिपेट करते हैं?
हाँ, वो तो हर सरकार कहती है कि MI5 के भी जितने भी क्रिटिकल हुए हैं अभी तक पूरी दुनिया में उनके बारे में तो हमेशा डिनाई ही रहा है। नेचुरली इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो भी काम होता है डिनाई होता है, और चूंकि डिनाइबिलिटी के रीम में बात होती है तो जहां बात होती भी नहीं तब भी लांछन लगा दिए जाते हैं दूसरे आदमी को दबाव में लाने के लिए।
तो भारत पर पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं की फंडिंग के आरोप, भारत ने किया खंडन, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदीप दीक्षित। दिल्ली की एक अदालत ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब अदालत ये जांच करेगी कि ये याचिका कितनी प्रमाणिक है। याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। पूरे प्रकरण पर जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सबसे कम उम्र की मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ लेखक अहमद खान की वो याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है जिसमें खान ने दावा किया है कि मंत्री ने चुनाव आयोग के सामने 3 एफिडेविट पेश किए थे और तीनों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अलग अलग जानकारी दी थी। बीजेपी लीगल सेल के वकील अनिल सोनी ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने दावे अदालत में साबित करने होंगे। वकील अनिल सोनी कह रहे थे कि याचिकाकर्ता को अदालत में ये साबित करना होगा कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को फर्जी एफिडेविट दाखिल किए थे, लेकिन याचिकाकर्ता अहमद खान कहते हैं उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।
किसी कोई नया एविडेंस कोर्ट में हम लोगों को पेश नहीं करना है। स्मृति ईरानी जी के जो पुराने एफिडेविट्स हैं जो हमने जिनको अपनी कंप्लेंट का आधार बनाया है उन्हीं एविडेंस को टेस्टिफाई किया जाएगा कोर्ट में 28 अगस्त को और उसके बाद समन्स इशू किए जाएंगे।
अहमद खान की याचिका के अनुसार अप्रैल 2004 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि उन्होंने बीए की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के पत्राचार कार्यक्रम से पूरी की। जुलाई 2011 में गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले एक एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीए कॉमर्स पार्ट वन तक पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से की थी, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने बीए कॉमर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पूरी की थी। अहमद खान का कहना है कि ये मामला शिक्षित या अशिक्षित होने का नहीं है, बल्कि ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री होते हुए भी उन्होंने इस पर ईमानदारी से काम नहीं लिया। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने स्मृति ईरानी के तुरंत इस्तीफे की मांग की है।
अगर एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ही रहती हैं तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के साथ साथ स्मृति ईरानी उस जांच को प्रभावित नहीं कर पाएंगी जब उनके ही अधीन आने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अधिकारी से जब पूछा जाएगा असलियत, तो क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और जांच को प्रभावित करने वाली स्मृति ईरानी की पोजिशन नहीं होगी? इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि श्रीमती स्मृति ईरानी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को उनको एकदम से हटाया जाना चाहिए।
हाल में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कथित फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इन दिनों वो जेल में है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ी हैं और डिग्री मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस के तीन राष्ट्रपतियों की जासूसी के विकिलीक्स के दावे के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओला अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात करेंगे। विकिलीक्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ने 2006 से 2012 के बीच फ्रांस के तीन राष्ट्रपतियों की जासूसी कराई थी। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
फ्रांस के तीन राष्ट्रपतियों की जासूसी की खबर से फ्रांस नाराज है। इस बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत करेंगे। फ्रांसवा ओला ने कहा है कि सुरक्षा और हितों के खिलाफ कोई कार्रवाई फ्रांस बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बारे में फ्रांस के सरकारी प्रवक्ता स्टीफन लेफोल ने कहा,
C'est inacceptable, oui, bien sûr, entre alliés, je l'ai dit. Quand on est dans la lutte, il y a eu des moments de tension dans le monde.
यह सहयोगी देशों में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब आप युद्ध में शामिल हों, दुनिया में कई जगह तनाव है, चरमपंथियों से लड़ रहे हैं, तो ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि सहयोगी देश के मामलों में जासूसी की क्या जरूरत है, जबकि हम ज्यादातर मामलों में साथ हैं।
फ्रांस के सरकारी प्रवक्ता स्टीफन लेफोल के शब्द। हालांकि अमरीका ने कहा है कि फ्रांसवा ओलान की बातचीत को निशाना नहीं बनाया जा रहा, ना ही भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन पूर्व में की गई जासूसी के बारे में अमरीका ने कोई सफाई नहीं दी है। लेकिन CIA के पूर्व निदेशक जेम्स वूल्से से बीबीसी ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सहयोगी देशों के बीच जासूसी एक आम घटना है और अक्सर ये जासूसी आर्थिक मामलों के लिए की जाती है।
I won't make any specific accusations about France, but there are several nations on the continent.
मैं फ्रांस के बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहना चाहता, लेकिन कई देश हैं जो अपने अपने देशों की कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए जासूसी का इस्तेमाल करती हैं। जासूसी से जुटाई गई जानकारी को कंपनियां आगे रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर ये रिश्वत देना बंद हो जाए तो जासूसी भी बंद हो जाएगी।
ये थे CIA के पूर्व निदेशक जेम्स वूल्से के शब्द। विकिलीक्स के प्रवक्ता क्रिस्टीन हरप्सन ने कहा कि जिस तरह जर्मनी की चांसलर के फोन को टैप किया जा रहा था, ये भी इससे मिलता जुलता मामला है।
Previously was revealed that Angela Merkel's phone had been intercepted, but at that time
पहले ये सामने आया था कि एंगेला मर्केल का फोन रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हम कोई सबूत नहीं दे पाए थे। इस बार हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं, एक बेहद खुफिया रिपोर्ट जिसमें राष्ट्रपति की उनके स्टाफ से बातचीत, वाशिंगटन में फ्रांस के राजदूत की सार्कोजी के वरिष्ठ सलाहकार से बातचीत के अंश दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका और NSA किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
ये थे विकिलीक्स के प्रवक्ता क्रिस्टन हरप्सन के शब्द। दुनिया भर में खुफिया दस्तावेजों का खुलासा करने वाली वेबसाइट विकिलीक्स ने दावा किया है कि अमरीकी एजेंसी NSA ने 2006 से 2012 के बीच फ्रांस के तीन राष्ट्रपतियों की जासूसी की। फ्रांसवा ओलान, निकोला सरकोजाई और जाक शिराक की जासूसी की बात सामने आई है।
फ्रांस के तीन राष्ट्रपति की जासूसी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात करेंगे। लातिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में 62 साल के ओसवाल्डो ओ चोआ ने पिछले दिनों बिना कुछ खाए अकेले 200 किलोमीटर लंबा सफर तय किया, कभी पैदल तो कभी साइकिल पर। सिर पर हैट और गले में ग्वाटेमाला का राष्ट्रीय ध्वज लपेटे उनका यह सफर अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। राजधानी में उनका शानदार स्वागत हुआ। आज की दुनिया जहान में बात ओस्लो वाल्डो ओचोआ की और उनके बहाने एक जायजा लातिन अमरीकी देशों में भ्रष्टाचार की समस्या का। पेश कर रहे हैं अशोक कुमार।
दुनिया जहान।
Traigo ya con el día de hoy 5 días de no comer y de eso se trataba, es sostenido.
लंबे लंबे डग भरते हुए ओसवाल्डो ओचोआ कह रहे हैं कि 5 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और ये भूख हड़ताल इसलिए है क्योंकि वो अपने देश में एक साफ और स्वच्छ सरकार के लिए लड़ रहे हैं। खुद को गांधी से प्रेरित बताने वाले ओसवाल्डो ओचोआ लातिन अमरीकी देश ग्वाटेमाला के नागरिक हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वो 5 दिन में अपना 200 किलोमीटर लंबा मार्च पूरा करके राजधानी ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे तो उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद पिछले महीने ही ग्वाटेमाला में उपराष्ट्रपति रोक्साना बालदेती को इस्तीफा देना पड़ा। अब ओचोआ की मांग है कि राष्ट्रपति ओत्तो पेरेज मोलिना भी पद छोड़े। 62 साल के ओचोआ इस मार्च में अकेले ही थे लेकिन जिस तरह उनका स्वागत हुआ उससे लोगों के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर गुस्से को समझा जा सकता है। ग्वाटेमाला ही नहीं बल्कि लातिन अमेरिका के कई और देशों में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। ब्राजील में इसी साल मार्च में 15 लाख और फिर अप्रैल में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किए।
रोज नए कांड सामने आ रहे हैं, रोज सुनने को मिलता है कि देश से पैसा बाहर भेजा जा रहा है। अस्पतालों को देखिए, शिक्षा संस्थानों को देखिए, सुरक्षा हालातों को देखिए, बहुत बुरा हाल है।
हम सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि हम यहाँ ब्राजील में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं, हम राष्ट्रपति दिल्मा के खिलाफ हैं।
दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि लातिन अमेरिका के 2/3 देशों में भ्रष्टाचार को लेकर स्थिति वाकई गंभीर है। हालांकि इसी क्षेत्र में चिली और उरुग्वे भी हैं जहां भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का स्तर लगभग यूरोपीय देशों जैसा ही है, लेकिन बाकी देश इस मामले में अभी बहुत पीछे हैं। ऐसा मानना है लातिन अमरीकी क्षेत्र के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के क्षेत्रीय समन्वयक मैक्स हेवुड का।
इस क्षेत्र में वेनेजुएला और हैती सरकारी क्षेत्र के भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। हम 0 से 100 अंक के पैमाने पर भ्रष्टाचार को आंकते हैं, जहां 100 अंक पाने वाले देश की सरकार को स्वच्छ माना जाता है, लेकिन इस पैमाने पर लातिन अमेरिका के ज्यादातर देश 50 अंक से ऊपर नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब है कि क्षेत्र के 2/3 देशों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है।
हेवुड का कहना है कि उन्हें लगातार ये सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार तो लातिन अमेरिका की संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि कुछ लोग भ्रष्टाचार को मापने के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के तरीकों पर सवाल उठाते हैं। मसलन ब्राजील के साओ पाउलो में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना कहते हैं कि ऐसे मामलों में पश्चिमी संस्थाओं के अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की समस्या यह है कि वो कारोबार बिजनेस करने वाले जो लोग हैं पश्चिमी देशों के, उनके नजरिए से वो भ्रष्टाचार को देखते हैं। उनको कारोबार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन देशों के जो नियम है, कानून है, काफी कड़े हैं। अगर आप खास करके लेबर के जो कानून है बहुत सख्त है यहाँ पे, जैसे पश्चिमी देशों में हायर एंड फायर की पॉलिसी होती है, वैसा ये नहीं कर सकते आप, किसी को रख लिया निकाल लिया वो नहीं। तो वो इसको एक ऐसा देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और सरकार हमसे पैसा चाहती है।
हालांकि मैक्स हेवुड इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि अब तो कई स्थानीय संस्थान भी लातिन अमरीकी देशों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और उनके आंकड़े भी लगभग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे ही हैं और लोग बड़ी संख्या में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां सड़कों पर उतर रहे हैं।
भ्रष्टाचार आम जिंदगी को प्रभावित करने लगा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, अपराध का स्तर बढ़ना, अच्छी शिक्षा ना मिल पाना, ये सब दिक्कतें हैं। आपको पता होगा लातिन अमरीका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपराधिक दर वाला क्षेत्र है। इस सबसे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं।
ब्राजील में हाल के दिनों में दो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। पहला, तेल कंपनी पेट्रोबाश की तरफ से कई राजनेताओं को कथित तौर पर रिश्वत देने का मामला, जो राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के लिए खासा सिरदर्द बना हुआ है। जबकि दूसरा मामला है भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ी निर्माण कंपनी ओदरब्रेस्ट के मुखिया की गिरफ्तारी। शोभन सक्सेना कहते हैं कि इन सब मामलों के बावजूद आम लोगों को ब्राजील या फिर लातिन अमरीकी देशों में भ्रष्टाचार के कारण भारत जैसी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती हैं।
अगर आप कंपेयर करें भारत से या चीन से कि इस तरह के केस यहाँ पे नहीं होते कि पुलिस वाला किसी को उस वक्त पे रोक के पैसे ले रहा है या सरकारी कोई अपनी काम के लिए जा रहा तो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो चाहे पासपोर्ट बनवाना हो। तो आम आदमी को यहाँ भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भ्रष्टाचार की समस्या है ये काफी ऊपर के हल्के में है, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों में और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में संबंध है।
छोटे छोटे कामों के लिए भले ही रिश्वत न देनी पड़े, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पूरी व्यवस्था की जवाबदेही और पारदर्शिता को जरूर प्रभावित करेगी और इसका खमियाजा आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ेगा। अशोक कुमार, बीबीसी दिल्ली।
और अब दुनिया जहां कार्यक्रम के बाद बात करेंगे खेल समाचारों की। तो आखिरी वनडे चल रहा है, आदेश कुमार जी मौजूद हैं। बांग्लादेश सीरीज पहले ही जीत चुका है, इसमें क्या नजर आ रहा है?
जी देखिए, इस मुकाबले में भी बांग्लादेश ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और चौथे ओवर का खेल थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है और बांग्लादेश का स्कोर है 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी एक तिहाई रास्ता लगभग बांग्लादेश ने तय कर लिया। क्योंकि बांग्लादेश के सामने जीत के लिए आज काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, उसे 318 रन बनाने होंगे। इससे पहले आज बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी और भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 317 रन बनाया। भारत के लिए शिखर धवन ने 75 रनों की शानदार पारी खेली और उनके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 69 रनों का योगदान दिया, जबकि अंबाती रायडू ने 44 और सुरेश रैना ने 38 रन बनाए। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो पिछले 2 मुकाबलों में 11 विकेट अपने नाम कर तहलका मचाने वाले 30 गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने आज 57 रन देकर 2 विकेट लिए, मशरफ मुर्तजा ने 76 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि साकिब अल हसन ने 33 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। बांग्लादेश ने आज जब अपनी पारी शुरू की तो तमीम इकबाल कुछ खास नहीं कर सके और वे धवल कुलकर्णी का शिकार बने, उन्होंने 5 रन बनाए और उसके बाद धवल कुलकर्णी ने सौम्य सरकार को आर अश्विन के हाथों कैच आया जिन्होंने 40 रन बनाए। फिलहाल मुशफिकर रहीम और लिट्टन दास मैदान पर हैं।
मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इतने बांग्लादेशी इतने रन कैसे ठोक रहे हैं?
जी देखिए, अपनी ज़मीन पर खेल रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने जिम्बाब्वे को भी 5-0 से हराया था, पाकिस्तान को 3-0 से हराया था और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो वर्तमान टीम है ये पिछले कई साल से एक साथ खेल रही है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्व कप में इन्होंने इंग्लैंड को भी पराजित किया था और क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गए थे।
विदा लें आपसे, लेकिन स्कोर बता दें कि इस समय स्कोर हो रहा है 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन और 15वां ओवर खेला जा रहा है, आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों में से एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM के पदाधिकारियों ने ब्रितानी अधिकारियों को बताया है कि वे पार्टी को भारत सरकार से पैसा मिल रहा था। भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। अमरीकी मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग क्षेत्र में एक पुलिस चौकी पर हुई मुठभेड़ में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम के बंदूकधारियों ने कम से कम 40 लोगों को मार दिया है। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रफुल्ल विद्वई का आज हॉलैंड के एम्स्टर्डम में निधन हो गया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे कुणाल शर्मा। अगले कार्यक्रम घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।